श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मात्र से काम नहीं करना। सीखना होता है वहां हम मन बुद्धि इंद्रियां आदि से काम लेकर के धारण करते हैं बुद्धि में, वो सीख गए। और समझना होता है वो स्वयं के द्वारा होता है, वो मन बुद्धि के द्वारा नहीं। परंतु साधारण आदमी इन दोनों के भेद को समझता नहीं, वो सीखने को ही समझना मान गए कि हमने समझ लिया, हमने पढ़ लिया, हमने सत्संग से सुन लिया। तो सुन करके याद कर लेना है, ये सीखना है। उसका अनुभव हो जाए तो तत्काल परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, जिसको मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, वो तत्काल ही हो जाए। और समझ न सके तो कम से कम मान ले तो कल्याण हो जाए। मानना और असली जानना है, ये बरोबर अर्थ रखते हैं दोनों। यद्यपि मानने में है, जानने के जितना साक्षात्कार नहीं है, परंतु उससे इज्जत कम नहीं है। उस मानने मात्र से लाभ होता है वो कम नहीं। जैसे आप ध्यान दें, अपने आप को आप जानते मैं हूं, अपना होनापन, ये इसमें कभी किसी को वहम होता है क्या कि मैं हूं कि नहीं हूं, और कभी विपरीत धारणा होती है क्या मैं नहीं हूं। तो अपने आप को जानना है ना, आत्मने एव आत्मना तो तस्त प्रज्ञ सदोचित, अपने से अपने आप को हम जानते ये जानने के नमूना है थोड़ा सा। बाधा क्या है कि जैसे अपने आप को जानते हैं ऐसे ही संसार को भी मानते हैं और उसमें आकर्षण होता है, इस वास्ते हम फंसे रहते हैं। और मानना किसको कहते हैं, मानना नाम परमात्मा है, ऐसा मान लें तो ये दृढ़ता से मान लें तो जानने के जैसा फल होता है। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने सब जगह परमात्मा है ये मान लिया, ठीक दृढ़ता से मान लिया, तो मानने से उनको सब जगह वही दिखने लग गया। हर खंभ में सब जगह वो परमात्मा है, जैसे प्रत्यक्ष दिखता हो ऐसे ही उन्होंने मान लिया, प्रत्यक्ष की तरह इसमें कोई संदेह नहीं चिंतित मात्र भी। ऐसे परमात्मा को मानना है और स्वयं को जानना है, इन दोनों में से किसी बात को ठीक तरह कर लो तो मुक्ति में संदेह नहीं, कल्याण में संदेह नहीं। तो अपने आप को जानते हुए भी हम इंद्रियां और मन बुद्धि से जानना है इसको भी जानना मानते हैं, ये जानना नहीं है, ये तो केवल देखना है सीखना है। इंद्रियां से बुद्धि से हम समझते हैं वो एक सीखना है, ये वास्तविक जानना नहीं है। वास्तविक जानना होता है वो किसी के द्वारा नहीं होता है, द्वारा जो जानते हैं त्रिपुटी से जानते हैं, एक हम जानने वाले, एक हमारे जानने की वृत्ति और एक जानने में आने वाली वस्तु, ऐसे तीनों तीनों को लेकर हम जानते हैं। वो वास्तविक जानना नहीं है, वो देखना है और देख करके मान लेते हैं, वो सीखना है, जानना नहीं है। तो वास्तव में जब जान लेंगे यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव, जानने के बाद फिर मोह कभी नहीं होगा, वो ही नहीं सकते जान ली वस्तु। ऐसे आप मान लेते हैं तो उसमें भी मोह नहीं होता। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य है, भक्ति मार्ग में मानना मुख्य है। तो दृढ़ता से मान लेने पर जैसा ज्ञान का फल है वैसे ही फल होगा। तो जानना है वो ठीक तरह से खुद से जानना, सुन करके और हम उसको याद कर लेते हैं ये सीखना हुआ, और सुनते हैं ये देखना हुआ। कानों के द्वारा शब्दों को देखते हैं, नेत्रों के द्वारा रूप देखते हैं, स्पर्श के द्वारा कठिन कोमल आदि स्पर्श को देखते हैं, और रसना के द्वारा रस को हम देखते हैं खट्टा मीठा आदि, नाक के द्वारा सुगंधी दुर्गंधी को हम देखते हैं। तो देखने में, देखने के हमारे जो यंत्र है, औजार है, इंद्रियां है, ये सहायक होती है, इनकी सहायता से हम देखते हैं, और देख करके उसको जो याद कर लेते हैं ये सीखना होता है। तो शास्त्र पढ़ लो तो वो क्या होता है, देखना और सीखना होता है, याद है सब कुछ, पर वो यादगिरी जब तक नहीं जानेंगे नहीं मानेंगे तब तक काम नहीं देगी। वो भी एक तरह से संग्रह हुआ, संग्रह जैसे धन का कोई संग्रह कर लेता है वो धनी कहलाता है, तो तिजोरियों में बैंकों में अपने नाम से जमा कर दिया वो धनी है। इसी तरह से बहुत से शास्त्रों को सीख लिया तो वो विद्वान कहलाता है, परंतु वो विद्या सीखी हुई है, याद की हुई है, चलती फिरती लाइब्रेरी है, कहीं से कोई बात पूछ लो बता देगा, परंतु शोक चिंता दूर नहीं होंगे। और मान ले और जान ले तो मानने से भी मिट जाते हैं शोक चिंता भय उद्वेग, और जानने से तो रह ही नहीं सकते, क्यों ये सब के सब अनजान पने से पैदा होते हैं, अंधेरे में होते, अंधेरे में। अभी यहाँ अगर बिल्कुल अंधेरा हो जाए और खाली हाल पड़ा है उसमें हम चले तो धीरे धीरे चलेंगे, ठोकर न लग जाए, थम्बा न आ जाए, ऐसे देखते हुए चलेंगे, और जानते हैं कि थम्बे इधर रह गए, हमारा रास्ता सीधा है, परंतु अंधेरे में बहम रहता है, और प्रकाश में थम्बों के रहते हुए अगर खाली पड़ा तो दौड़ कर निकल जाएंगे, कोई लगेगी नहीं। तो प्रकाश एक और चीज है, ऐसे ज्ञान है, वो एक प्रकाश है, उस प्रकाश में हम बातों को जान लेते हैं तो बड़ा लाभ होता है। ऐसे मानने मात्र से लाभ है, जैसे ये बंबई है ऐसा हमने जान लिया, ये जानना नहीं है मानना है। बंबई को ढूंढोगे तो बंबई मिलेगी नहीं कभी तीन काल में भी, कोई खोजने लगेगा हम बंबई को खोजते हैं, एक एक मकान को ढूंढो, एक एक ईंट का टुकड़ा टुकड़ा ढूंढ लो, बंबई नहीं मिलेगा। तो क्या है, बंबई है ऐसा माना है, जानने में क्या मिले, परंतु उसमें संदेह नहीं होता, इसको याद करना नहीं पड़ता, ये याद रहती। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये याद किया हुआ ऐसा पक्का है कि भूलता नहीं है। अमुक का बेटा हूँ तो उसका बेटा कन याद न करे, 10 वर्ष भी याद न करे, मैं जब याद करूँ वैसे ही वैसे मिले, वो ही मिलता है। मैं तो अमुक का लड़का हूँ, अमुक जाति है, तो ये मानना है। ऐसे प्रभु को मान लिया जाए तो बेड़ा पार है, और जाने तो कहना ही क्या है। तो आज एक बात जानने के लिए कहने का मन करता है, आप ध्यान दे करके सुनेंगे और बुरा न मानेंगे, नाराज नहीं होंगे, मेरी बात को जानने के लिए उत्कंठित हो जाए, आज समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं तो फिर पूछें, फिर पूछें, बार बार पूछें। आप पूछते हुए न उकतावे, मैं कहता हुआ न उकताऊ, तो जरूर जान जाए उस बात। तो आपके विरुद्ध बात कह रहा, सबके नहीं, ज्यादा तादाद में आप लोग हैं उनके मन से बिल्कुल विपरीत बात कहता हूं। संसार में अगर कोई रद्दी चीज है तो पैसा है, पैसे के समान कोई रद्दी चीज नहीं है। तो आपकी गति कैसे होती है, सभी काम पैसे से होते हैं, तो काम पैसे से होते हैं हम मानते हैं, परंतु पैसा स्वयं काम आता है क्या, किसी वस्तु के द्वारा काम आता है, किसी क्रिया के द्वारा आता है, किसी मनुष्य के द्वारा आता है, तो वस्तुओं काम आती है स्वयं, रुपया स्वयं काम नहीं आता, आपके जीवन के लिए स्वयं रुपये काम के नहीं, रुपयों के द्वारा हम चीज ले लेते हैं तो रुपये एक साधन है, साध्य नहीं है, ध्यान रहे। एक आदमी को रुपये दे दिए जाए, हजारों लाखों और करोड़ों और चांदी और सोने के ढेर पर खड़ा कर दिया जाए, परंतु अन्न जल वस्त्र आदि घर दिया जाए तो कितना दिन जिएगा? और एक को अन्न जल और वस्त्र आवश्यक चीज देते रहो, रुपया का नाम मत सुनाओ, दर्शन भी मत कराओ, उम्र भर कभी वो जी जाएगा कि मरेगा? खुद जी जाएगा। अन्न जल देते रहो, अन्न जल वस्त्र जिससे संसार शरीर काम आने वाली वस्तु, काम आने वाली वस्तु मिल जाएगी तो वो जीता रहेगा, पर काम आने वाली वस्तु न मिले और केवल रुपये मिल जाए उसे जी नहीं सकती। वस्तुओं के लिए रुपयों की जरूरत है, रुपयों के लिए वस्तुओं की नहीं, वस्तुएं जीवन के उपयोगी है। हम जो जी रहे हैं उस शरीर से हम काम कर सकते हैं कि वो शरीर के जो निर्वाह है वो निर्वाह वस्तुओं से होता, तो वस्तुएं बहुत बड़ी है, सिक्के से वस्तु का बहुत बड़ा मूल्य है और वस्तु से व्यक्ति का बड़ा भारी मूल्य है और व्यक्ति से विवेक का मूल्य है और विवेक से सत्य का मूल्य है और सत्य की प्राप्ति होने के बाद करना और जानना पाड़ा कुछ बाकी नहीं रहता। ये तत्व जानने का, तो रुपयों को आदर हम देते हैं किस जगह? कि वस्तुओं के लिए तब तो है ठीक, और वस्तुएं बिक जाए कुछ भी पास न रहे, रुपयों का अगर संग्रह करते हैं कोरा तो सज्जनों क्षमा करना, बुद्धि मारी गई। रुपयों के लिए सब उद्योग किया जाए, रुपयों का संग्रह और उस संग्रह में भी रुपयों की संख्या बढ़ाई जाए, संख्या वो क्या काम आवेगी? आफत में काम आवेगी, चोर डाकू आर लगेंगे, इंक्वायरी खुद बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर वो नहीं रहेगी तो पागल हो जाओगे, पास में रहेगा तो अभिमान आ जाएगा, तो दम्बोदर को अभिमान से आसुर संपत्ति आवेगी। तो पैसे काम की चीज है अपनी जगह, पहले ही माफी मांग ली, फिर भी कहता हूँ क्षमा करना। जूती बड़ी भारी काम की चीज है, क्योंकि इतने शरीर को लिए फिरती है, कांच है, कंकर है, कांटा है, लगता नहीं, हमारे रक्षा होती है। जूती के बिना चलना बड़ा कठिन होता है, इस वजह से जूती काम की है, पर सिर पर लेने की काम की है क्या? पैरों के काम की है और आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, परंतु सिर पर लेकर चलने की नहीं। ऐसे रुपये पैसे अपनी जगह बड़ी भारी काम की चीज है, परंतु सिर के ऊपर चढ़ जाइए सबसे, वस्तुओं से ही बढ़िया और व्यक्तियों से भी बढ़िया, व्यक्तियों का तिरस्कार। हमने अपने कानों से सुना है, छोरे का ब्याह किया गया, दहेज कम आया, उस छोरी को मार दिया, दूजा ब्याह करेंगे तो धन आएगा, अधिक आ जाएगा, और उस लड़की का तिरस्कार करते हैं, तेरे बाप ने धन नहीं दिया। तो धन के सामने व्यक्ति का तिरस्कार करना कितना बड़ा भारी पाप है। धन की अपेक्षा तो वस्तुएं कीमती, और वस्तुओं से मनुष्य कीमती, जो वस्तुओं के द्वारा निर्वाह होता है मनुष्य का, और मनुष्य का मूल्य नहीं है, कितना मूल्य है इसका कोई मूल्य नहीं। जिस मनुष्य शरीर से परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए और सुख इतना अपार मिल जाए कि किसी सीमा नहीं है ऐसा, इस मनुष्य शरीर से, उस मनुष्य शरीर का तिरस्कार और मनुष्य शरीर के बदले में रुपयों का इतना आदर, ये बुद्धि का भ्रष्ट होना है। रुपयों की जगह रुपयों की काम है, परंतु व्यक्ति से रुपये तेज नहीं है भाई, रुपयों से तो श्रेष्ठ है वस्तु, और वस्तु है श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए, तो उससे श्रेष्ठ है व्यक्ति। दो शरीर लिया है ये श्रेष्ठ है, क्योंकि वस्तुओं के लिए रुपया चाहिए और शरीर के लिए वस्तुएं चाहिए। शरीर के लिए वस्तुओं की जरूरत है, वस्तुओं के लिए शरीर नहीं और वस्तुएं रुपयों के लिए नहीं, रुपये वस्तुओं के लिए, वस्तुएं शरीर के लिए, और शरीर है वो विवेक के लिए। सत क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, ज्ञान करने लायक क्या है, त्याग करने लायक क्या है, ये है विवेक। मनुष्य में कितना विवेक अधिक होगा वो समाज में ऊंचा पद पा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति से भी विवेक बढ़ा है। जितना विवेक अधिक होगा, ज्ञान अधिक होगा, समझ अधिक होगी, वो तेज होगी। और विवेक से भी सत्य, तो असत्य का त्याग कर सत्य की प्राप्ति कर लेना, ये सब सत्य। सत्य की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म है, उसमें सहायक हो जाए पैसे बड़ी अच्छी बात, वस्तु हो जाए बड़ी अच्छी बात, व्यक्ति हो जाए बड़ी अच्छी बात, विवेक हो जाए बड़ी अच्छी बात। तो सत्य की प्राप्ति के लिए उपयोगी हो जाए वे पैसे भी बड़े भारी काम की चीज, उसके लिए वस्तुएं भी बड़ी भारी काम की चीज, व्यक्तियां भी बड़ी भारी काम की चीज, और वो विवेक भी बड़ा भारी काम की चीज, और विवेक के द्वारा सत्य वो तो है ही प्रापणीय। तो रुपया खुद काम नहीं आता, व्यक्ति के खुद के काम में रुपया नहीं आता। रेत काम आती है, मिट्टी काम आती है, घास काम आता है, और सज्जनों मनुष्य टट्टी भर देता है वो मैला भी सुअर आदि के काम आता है, रुपये खुद काम किसी के नहीं आते। रुपयों से किसी का भी जीवन नहीं चलता, सुअर का जीवन चलता है मैले से। तो वो बढ़िया है जिसे जीवन चले, प्राण धारण कर सके, रह सके, जीता संसार में, वे उपयोगी वस्तुएं हैं। उन वस्तुओं के विनिमय करने के लिए, लेने देने के लिए रुपया साधन है, साध्य नहीं है। साधन मानो आपको धन्यवाद दिया जाए, पर साध्य मान लेते हो तो भाई पतन हो जाए। रुपये साधन है, साधन की जगह बड़ी भारी काम की चीज है। जैसे हम किसी मकान पर चढ़ते हैं तो उसे सीढ़ियां लगी है बड़ी काम की चीज, पर सीढ़ी बड़ी काम की वहीं बैठ जाओ तो कैसे पहुंचोगे। ऐसे रुपये काम की चीज है, अपनी जगह बहुत काम की चीज, वो वस्तुओं के लिए, वस्तुओं व्यक्तियों के लिए बहुत बढ़िया है। पहले जमाने में लोग वस्तुएं रखते थे, आजकल के जमाने में रुपया अधिक रखते हैं। गांवों में रहने वाले खेती करते थे, अनाज अधिक होता, अपने घरों में जितना कोस कोस लिया है उनको भर देते, और उसके सिवाय रहता तो जमीन खोद कर उसमें डाल करके ऊपर रेत फेर देते, रख देते। आज अनाज कहाँ रहा, घास नहीं रह सकता, बिक्री कर दिया रुपये पैदा हो जाएंगे, महंगा भाव हो गया, अब रुपये कर लो, अन्न के भी रुपये कर और घास के भी रुपये, पशुओं के रुपये, रुपये अधिक हो जाए, संख्या अधिक बढ़ाने में होड़ भरी है। अब पशु मर रहे हैं, रुपये क्या काम दे, अगर उनका घास रहता तो आज पशु जी जाते, पशु व्यक्ति है, व्यक्तियों के लिए वस्तु खोदी नहीं, खत्म कर दी, रुपये रह गया, रुपयों को खिलावे क्या करे। परंतु एक लहर खाई हुए है रुपयों का, तो संग्रह है वो बड़ा बढ़िया लगता है, ये संग्रह ज्यादा हो जाए। एक बात और कहूं, ध्यान देकर सुने आप लोग, बढ़िया उपयोग है उपयोग, रुपयों का भी अच्छा उपयोग किया जाए, वस्तुओं का भी अच्छा उपयोग किया जाए, मनुष्य का भी अच्छा उपयोग किया जाए, नीति में श्लोक आता है अमंत्र अक्षरम नास्ति, कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र न हो। नास्ति मूलम अनौषधम, ये जो मूल जड़ी बूटी है कोई ऐसी नहीं है जो औषध न हो। और अयोग्य पुरुषो नास्ति, और मनुष्य कोई भी अयोग्य नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, योजक दुरुपयोग उसको लगाने वाला, मानो किस मंत्र से कैसे कैसे होता है, कैसे लाभ होता है, किस औषधि के क्या क्या मिलाने से कौन सा रोग दूर होता है, रोग ऐसा जानने वाले का। ऐसे ही कौन मनुष्य किस काम के लायक है उसको उसी काम में लगाया जाए तो बहुत ठीक हो जाएगा। अयोग्य नहीं, एक वस्तु के एक काम के लिए अयोग्य होता है, वो दूसरे काम के लिए योग्य होता है। तो ठीक तरह से उपयोग किया जाए उनका ठीक तरह से तो वो कल्याण करने वाला होता है। तो सदुपयोग बढ़िया है सज्जनों, सबसे बढ़िया सदुपयोग है। वो पैसों का कर सकते हो, वस्तुओं का कर सकते हो, व्यक्तियों का कर सकते हो, विवेक का कर सकते हो, जिसे सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाए। भाइयों बहनों ध्यान दें आप लोग, मेरे को कई कई बातें ऐसी विलक्षण विलक्षण संतों से मिली है, मेरे को बहुत प्रिय लगी है, बड़ी श्रेष्ठ लगी है, जिससे प्रकाश हो जाए भीतर। इस बात आप लोगों को सामने कहता हूँ, शायद आपको भी बढ़िया लगे। तो हमारे विवेक के सामने दूसरी संसार की चीजें कोई इतनी बढ़िया नहीं। वो क्या मिली है कि सदुपयोग। आपके पास में धनवत्ता है तो धन का सदुपयोग करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। धन नहीं और दरिद्रता है तो दरिद्रता का सदुपयोग करो, परमात्मा प्राप्त मिल जाए। आप निरोग है तो निरोग पड़े का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और आप बिल्कुल निर्बल है, रोगी है, तो रोग का और निर्बलता का भी उपयोग अच्छा कीजिए, भगवान मिल जाएंगे। आपके पास जो परिस्थिति सुखदायी दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल है उसी परिस्थिति का सदुपयोग किया जाए तो परमात्म तत्व का बोध हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई मनुष्य अयोग्य नहीं है, और उसको जो परिस्थिति मिली है वो सबकी सभी साधन सामग्री कब उपयोग किया जाए ठीक, और दुरुपयोग किया जाए तो पतन करने की चीज। सदुपयोग की बड़ी भारी महिमा। दरिद्रता है तो क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं, कोई वस्तु नहीं रहने के लिए, मकान नहीं, सांप दरिद्री है, कंगले है। तो सांप कंगले का रूप, दरिद्रता का रूप, और एक त्यागी पुरुष है, तो दोनों के रूपों में क्या फर्क है भाई। त्यागी के पास में न अन्न है, न वस्त्र है, मामूली कपड़ा है, मामूली दरिद्री पास में ही है, रहने के कोई मकान नहीं, न त्यागी के न दरिद्री के, दोनों के भी अंतिम में दान नहीं है, परंतु अवस्था एक है क्या, त्यागी की और दरिद्री की अवस्था एक है, बल्कि एक अवस्था है क्या दोनों की। एक को अन्न मिला नहीं, एक ने एकादशी किया अन्न खाया नहीं, भूखे दोनों बरोबर है, परंतु अन्न नहीं मिला और एक उपवास किया कि आज भोजन करेंगे नहीं, भोजन खाया नहीं, तो भोजन रहित तो भूखे दोनों हैं, पर दोनों की अवस्था एक है क्या। मिला नहीं वो दुखी है और खाया नहीं वो सुखी, ऐसे दरिद्री है वो दुखी है और त्यागी मस्त है। त्यागी के पास धनी से धनी आदमी जाकर शांति लाभ करता है, इतना आनंद है। दरिद्री इतना भिखारी है जो मिल जाए तो लोग सुगम भी खराब समझते हैं और उसका संग करना नहीं चाहते, तो अभाव दोनों के पास। तो जिनके पास धन नहीं वो अगर भीतर से त्याग कर दे कि हमें धन लेना ही नहीं, भीतर से धन की इच्छा को मिटा दे तो क्या दरिद्रता रहेगी? दरिद्रता धन के अभाव का नाम नहीं है। भीतर से जो रुपयों की चाहना है उसका नाम दरिद्रता है। वो वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, जिसके कृष्णा ज्यादा वो दरिद्री है। श्रीमांस्त का लक्ष्मीवान कौन है? इसके समस्त तोष चाह गई चिंता मिति मनवा बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो साहन प्रतिशा बाधाओं का बाधा चाहिए ही नहीं कुछ। कहते चाहिए भी ना कैसे काम चलेगा भाई? अरे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, चाहिए चाहिए तो लेन लगी है। कि जिसके हृदय में चाहना नहीं है उसके लिए वस्तुओं की कमी रहेगी नहीं। कमी चाहना से रहती है, और चाहना रहते हुए कमी कभी मिटेगी नहीं। चाहे लाखों रुपए दे दिया जाए, करोड़ रुपए दे दिया जाए, तो भी दरिद्रता मिटेगी नहीं। थोड़े रुपये होंगे तो दरिद्रता छोटी रहेगी, और तो ज्यादा रुपये होगा तो बड़ी दरिद्रता होगी। साधारण घरों में रहने वाले गांव के आदमियों को कभी भी लाख का घटा लगता ही नहीं। पीढ़ियों में लाख का घटा नहीं लगा उनके, और धनी आदमियों के लाख का घटा दिनों में लग जाता है। और उनके चाहना होती जो जो धन बढ़ेगा जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी अधिक बढ़ेगा। 100 रुपये पास में होने से 1000 की इच्छा होती, और 1000 रुपये पास होने से 1000 में आजकल 10,000 तो कम से कम होना चाहिए, और 10,000 होते ही मन में आती है कि लखपतियों में भी नाम नहीं हुआ। अरे 1,00,000 रोकड़ में 1000 रुपया पास में, रोकड़ में 1,00,000 रुपये होंगे तो बाहर का बेल होगी तो काफी होगा। वो 1,00,000 रुपया होने पर करोड़पति होने की इच्छा होती है, तो 100 के 1,000 की इच्छा 900 का घाटा, 1,000 के 10,000 की इच्छा होती 9,000 का घाटा, और 10,000 में 1,00,000 चाहिए 90,000 का घाटा। और 1,00,000 हो जाए तो 10,00,000 पर नहीं करेगा, करोड़पति हो जाओ, 99,00,000 का घाटा है। घाटा बढ़ा, रुपया धन बढ़ा। मूल धन संग्रह करके रख लिया 1,00,000 रुपये, अब मूल में से अगर 10,000 भी खर्च हो जाए तो शोर से लड़ता है तुम कमाओ और खाओगे? मूल धन खर्च करते हो, अकल नहीं तुम्हारे में? कमाओ और उसमें बढ़ाओ तो ठीक बात है, मूल धन खाते तो मूल धन क्या करो, आग लगाओगे? किंचित बात कर दरिद्रता का उपयोग भीतर से दूसरों की इच्छा का क्या कर रहे। भिक्षा न मिले तो भूख कोई पा लेते हैं, रुपये न मिले तो उस दरिद्रता को पा लेते हैं। बस दरिद्रता हमें क्या कर दिया, हमें लेंगे ही नहीं रुपये। भीतर से त्याग रखे अपना, और नहीं तो समता रखे रहा। रुपये आ जाए तो बड़ी अच्छी बात, न जाए तो अच्छी बात, आ जाए तो अच्छे काम में लगा देंगे, नहीं आ जाए तो झंझट मिटी। रोटी कपड़ा तो मिलेगा भाई, जिसने शरीर दिया है उसने शरीर के निर्वाह का प्रबंध किया है। पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट के काज कहा भटके। अपनी अपनी माँ के पेट में थे भाई बहन, हरे सोचो उस समय में पेट भरता था, वो पलकर बड़े हुए थे तो खुराक मिलती थी कि नहीं, वहां वो कौन सा उद्योग करते थे सर। और जन्मे के बाद दूध मिला, उसमें कोई हमने परिश्रम किया था क्या? भगवान की तरफ से दूध का प्रबंध कैसा, अधिक गर्म मिले तो छोरे का मुंह होता है बड़ा नरम उधर जाए, ठंडा मिले तो वायु हो जाए, ना ठंडा ना गर्म, ठीक ठीक चाहिए। और दूध कैसा पात्र में लिया हुआ, जितना चाहे पी लो छोड़ दो, खराब होता नहीं। और दूध देने वाली पिलाने वाली माँ स्वयं गोदी में लेकर पिलाएगी अथवा सो जाएगी पिलाएगी, गर्ज उस गया हमारे ही। ऐसा प्रबंध है परमात्मा, दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कहा अन्न न दई है, क्यों दिए दांत से क्या चबाए बताओ। तो भगवान कहते हम मान गए, दान दे दिया, दांत नहीं था कहां से चबाए बेचारा, विश्वास दूध दे दिया की जो मौज। और पलते थे ये भाई बहन, हम सब के सब अपनी माता के दूध से पले रहे हैं, बहू का मिल गया और किसी का मिल गया दूध से, तो वो प्रबंध भगवान का किया हुआ है। ऐसे भगवान वस्तुओं का प्रबंध करते हैं, तो धन न होने पर भी प्रबंध होता है। सज्जनों क्या कहे, आपके पास समझ में आवे ना आवे, आप माने न माने, धन आप नहीं रखेंगे तो आपके निर्वाह की वस्तुओं की कमी नहीं रहे। संतों की बातें मैंने सुनी, एक मंडली थी महाराज, मंडली चली गई तो एक दिन भिक्षा नहीं मिली गांव में, जा रहे दिन तो मंडली थी, भिक्षा नहीं मिलने से पूछा अगाड़ी जागर संतों ने, अरे भाई किसी साधु के पास पैसा है क्या? ये साधु बोले हमारे पास रुपये है, यही कारण भिक्षा नहीं दिया, नहीं तो भिक्षा कैसे नहीं मिले, पास पैसे रहते ईश्वर नहीं मिलते। और कुछ भी नहीं रहता है उसको आकर लोग भिक्षा देते। एक बाबा मिले थे हमें, वो अजगर चलते थे अपने पड़े ना पा रहे, किसी से कुछ नहीं कहना, भोजन पहुंच जाता, एक दो दिन तीन दिन भूखे भी रह जाते, प्रबंध हो जाता, इसमें संदेह नहीं। ऐसी कई बार बातें देखी है, घटनाएं घटी, क्योंकि अपना प्रारब्ध वो तो रहेगा ना, भाग्य तो साथ में रहेगा, जैसा मिलना अंदर मिलेगा। पर इसका उल्टा अर्थ मत लेना, उल्टा अर्थ क्या है, उद्योग क्यों करे, भाग्य से मिल जाएगा, मनुष्य बने से गिर जाओगे। उद्योग का अर्थ भाग्य को न मानना नहीं है, और भाग्य को मान लेना, प्रार्थ को मान लेना उद्योग रहित होने में नहीं है। भाग्य को मानने का अर्थ है चिंता न करना, उद्योग पूरा करना, चिंता क्यों करे। जीव तू मत करना फिकरी, भाग्य लिखी सो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी। अच्छी बुरी होकर फिक्र मत कर, फिकर बंद करने के लिए प्रारब्ध है, उद्योग बंद करने के लिए कभी नहीं। उद्योग करना तो मनुष्य का काम है, उद्योग करना परमात्मा की प्राप्ति के लिए। दुकानदार करो तो दुकानदारी पे परमात्मा प्राप्ति के लिए, नौकरी करो तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, खेती करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए करो, भगवान पर एहसान करो कि तुम्हारे यहां मैं खेती करता हूँ, तुम्हारे बाल बच्चों का पालन करता हूँ, तुम्हारे लिए नौकरी करता हूँ। भगवान सुने, हाँ भैया मेरा काम करता है। प्रसन्न हो जाएंगे भगवान एक ऐसी मौजूदगी में। तो रुपए पैसों से वस्तु बढ़िया है जिस वस्तु से निर्वाह होता है, और जिस शरीर का निर्वाह होता है उस शरीर में विवेक है। विवेक सत्य असत्य नित्य अनित्य सार असार तत्व को जानना ठीक तरह से, उस तत्व जानने की महिमा है। और जान करके उस सत्य को प्राप्त कर असत्य का त्याग कर देना है। वास्तव में उस सत्य को प्राप्त करने के लिए ही मानव जन्म है। परंपरा से धन अगर उसकी प्राप्ति में लगा है तो बड़ा भारी बढ़िया धन है। तीन गति है द्रव्य की, दान भोग अरुनाश। दान होता है तो भोग होता है नाश। दो ही बात निकल रही गति तीसरी दास। ना तो स्वयं खाता है ना खिलाता है तो नष्ट हो जाता है। ये तो उपयोग में लेने के लिए है, बस जो मिल जाए उपयोग में है। इस वास्ते उपयोग में आ जाए, आपके आ जाए, औरों के आ जाए, बहुत अच्छी बात। हमारे पास है विद्या है तो, बुद्धि है तो, योग्यता है तो, धन है, कोई पद मिला, कोई अधिकार मिला तो अधिकार दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, अपना ऐसा आराम भोग के लिए नहीं। ऐसे आप समझे तो बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे मान लेना बढ़िया, जान ले भीतर से। अब तो कहना ही जान गए हम थी, ये संसार की वस्तु में सदा साथ चलेगी नहीं, रहेगी नहीं, थी नहीं, सेवा करने के लिए है। तो जरा भगवान ने जो दिया वो सेवा में लगाओ, उत्साह पूर्वक लगाओ, बुद्धि दी तो बुद्धि लगाओ, धन दिया तो धन लगाओ, योग्यता दी योग्यता लगाओ, पद दिया तो पद को लगाओ, सेवा करता रहे मौज और मस्त रहे आनंद से, तो जीवन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें शंका हो पूछो, उधर सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता
राम जय सीता राम
जय सीता।
सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वर शिवालय की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
नारायण
श्रीमन नारायण